السلام علیکم. آج جمعہ ہے، جنوری کی 20 تاریخ. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ. پاکستان اور روس کے بین الحکومتی کمیشن کے اجلاس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان 3 معاہدے طے پا گئے ہیں. پاکستان اور روس نے آئل اور گیس سیکٹر میں تجارت کے لیے مارچ میں ایک لائحہ عمل تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد ملک میں ڈیزل اور پیٹرول کی درآمد کی جا سکے گی. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت کی مشکل صورتحال میں پاکستان اور روس کے درمیان ہونے والے معاہدے خوش آئند ہیں، اور ان سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جو ماضی میں سیاسی مصلحتوں کی نظر ہوتے رہے ہیں، اب وہ کاروباری سطح پر ہوں گے، جن سے پاکستان کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. اسلام آباد میں روسی وفد کے دورے پاکستان کے اختتام پر پریس کانفرنس میں اعلان کیا گیا کہ پاکستان اور روس کے درمیان 3 معاہدے طے پا گئے ہیں. پاکستان اور روس کے درمیان کسٹم معاملات میں تعاون سے متعلق معاہدے، پاک روس تجارتی سامان کی کسٹمز ویلیو پر دستاویز اور ڈیٹا کے لین دین کے معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے ہیں. پاکستان زر مبادلہ کے انتہائی معمولی ذخائر کے ساتھ مشکل مالیاتی صورتحال میں پھنسا ہوا ہے، جہاں حکومت کے پاس بین الاقوامی قرض کو ادا کرنے کے لیے کافی رقوم نہیں ہے. پیٹرولیم مصنوعات اور دیگر ضروری اشیاء کی درآمد جاری رکھنا بھی مشکل ہو چکا ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان کے لیے مالیاتی استحکام کی طرف جانے کا راستہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے ہی ہو کر گزرتا ہے، اور اسے ادائیگیوں کے توازن کے درپیش بحران سے نکالنے میں مدد دے سکتا ہے. تجزیہ کار موجودہ بحران کو کم کرنے کے لیے دوست ممالک کی جانب سے معاشی امداد کو بھی اہمیت دیتے ہیں. تاہم ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ان ممالک سے معاشی امداد حاصل کرنے کے لیے بھی IMF سے بات چیت کو کامیاب بنانا ہوگا. قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے پاکستان تحریک انصاف کے مزید 35 ارکان کے استعفے منظور کر لیے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے عمل نے ثابت کیا ہے کہ وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس نہیں ہیں. انہوں نے آج جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے. اسلام آباد میں جمعے کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر PTI کے رہنماؤں شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری اور اسد قیصر نے میڈیا سے گفتگو کی. شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اسپیکر کا موقف تھا کہ میں اجتماعی طور پر استعفے منظور نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے یہ تسلی کرنی ہے کہ کسی رکن نے دباؤ میں تو فیصلہ نہیں کیا. ان کا کہنا تھا کہ یہ میری آئینی ذمہ داری ہے، لیکن آج انہوں نے اپنی اس ذمہ داری سے فرار اختیار کیا. راجہ پرویز اشرف کی جانب سے مخصوص نشستوں پر موجود 4 خواتین کے استعفے بھی منظور کیے گئے ہیں. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق افغانستان میں طالبان حکومت کی وزارت برائے نیچرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ترجمان شفیع اللہ رحیمی کا کہنا ہے کہ 10 جنوری کے بعد سردی میں آنے والی شدت سے 78 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور 75,000 سے زائد مویشی بھی ہلاک ہو چکے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ طالبان نے پورے ملک میں اندازاً 10 لاکھ افراد تک مدد پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور سخت موسم میں مزید خاندانوں تک امداد پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں. اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور نے جمعرات کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا ہے کہ شدید سردی سے افغانستان کے مغربی اور شمالی علاقوں میں مبینہ طور پر ہزاروں مویشی ہلاک ہو چکے ہیں. عالمی ادارے کے مطابق مویشیوں کی ہلاکت اور املاک کے ضیاع کے باعث افغان خاندانوں کو درپیش خطرات مزید بڑھ جائیں گے. ملک میں پہلے ہی تقریباً 2,12,00,000 افراد کو خوراک کی فراہمی اور زراعت کے لیے مدد کی ضرورت ہے. اسلامی ملکوں کی تنظیم یا OIC نے جمعرات 19 جنوری 2023 کو افغان دارالحکومت کابل میں انتہائی ضرورت مند خاندانوں کے لیے फूड बास्केट प्रोजेक्ट का आगाज किया है, जिसकी माली एयानत किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर ने की है और इस मंसूबे को अफगानिस्तान में OIC मिशन के जरिए लागू किया गया है। यह मंसूबा 25 अफगान रियासतों का इहाता करेगा और उसके तहत 2,84,000 अफराद में 47,400 फूड बास्केट्स तकसीम की जाएंगी। यूनेस्को ने सन 2023 का तालीम का आलमी दिन यानी 24 जनवरी अफगान लड़कियों और ख्वातीन के लिए वक्फ करने का फैसला किया है और इस मौके पर तंजीम तालिबान से मुतालबा करेगी कि वो फौरी तौर पर तालीम के बुनियादी हक को बहाल करें। यूनेस्को का कहना है कि इस वक्त स्कूल जाने वाली 80% अफगान लड़कियां और नौजवान ख्वातीन तालीम से महरूम हैं। उनकी कुल तादाद 25 लाख है जो तालीमी इदारों से बाहर हैं और अफगानिस्तान में तकरीबन 30% लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने प्राइमरी तक भी तालीम हासिल नहीं की है। अमरीका के दारुलहुकूमत वॉशिंगटन DC से लेकर लंदन, टोरंटो और दुनिया के कई दीगर शहरों में अफगान कारकुनान ने तालिबान की ख्वातीन मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। अफगान तारिकीन वतन ने इन मुजाहरों में तालिबान की सख्तगीर पॉलिसियों की मजम्मत करते हुए बैनुल अक्वामी रद्द अमल का मुतालबा किया है। अलबत्ता तालिबान ने इन इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने मुल्क को अमरीकी तसल्लुत से आज़ाद कराया है, लेकिन अफगानिस्तान से बाहर मुजाहरीन का कहना है कि वो अफगान ख्वातीन के साथ यकजहती का इजहार करते हैं जिनके हुकूक तालिबान की गैर जमहूरी हुकूमत में कुचले जा रहे हैं। वॉशिंगटन के नेशनल मॉल पर आज सालाना मार्च फॉर लाइफ यानी जिंदगी के लिए मार्च किया जा रहा है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गुज़श्ता साल रोवेट केस के फैसले को कलदम करार देने के बाद इसकात हमल के खिलाफ पहली सालाना तकरीब मुनाकिद की जा रही है। रोवी वेट केस में इसकात हमल के आइनी हक को तस्लीम किया गया था। चूंकि अमरीकी ख्वातीन इसकात हमल का अपना आइनी हक खो चुकी हैं, इसलिए रियासतें इस तरीक़ेकार के बारे में अपने कवानीन बना रही हैं। कुछ रियासतों ने इसकात हमल पर मुकम्मल पाबंदी लगाई है। इतवार को रोवेट केस की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है। भारत में हिजब इख्तलाफ की जमात कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरपरस्त नजरियाती जमात RSS पर भारत में मजहबी मुनाफरत फैलाने और समाज के मुख्तलिफ तबकों को आपस में लड़ाने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत का मीडिया इस लानत को बढ़ावा दे रहा है और महंगाई, बेरोजगारी और अमीर और गरीब में बड़ी तेजी से पड़ते हुए फर्क जैसे मसाइल को, जिनका मुल्क को सामना है, बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है। राहुल गांधी 4.5 माह से जारी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के नई दिल्ली के जेर इंतजाम कश्मीर में दाखिल होने के फौरन बाद लखनपुर के मकाम पर एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। BJP ने राहुल गांधी की तरफ से लगाए जाने वाले इल्जामात को झूठ का पुलंदा करार दिया है और उन पर मुल्क के अवाम को गुमराह करने की कोशिश करने का जवाबी इल्जाम आयद किया है। BJP के एक सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि उनके बकौल कांग्रेस पार्टी अपने सियासी मफाद के लिए जम्मू कश्मीर को एक मरतबा फिर तशद्दुद और दहशतगर्दी की राह पर डालना चाहती है। भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की सूरत हाल के पेश नज़र यात्रा के लिए गैर मामूली हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। श्रीलंका बैनुल अक़वामी मालियाती फंड से 2.9 बिलियन डॉलर का अहम कर्ज हासिल करने के करीब है, क्योंकि भारत ने मालियाती यकीन दहानियों में तौसी की है। कोलंबो को बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए अपने बड़े गैर मुल्की कर्ज दहिंदगान से ये यकीन दहानियां दरकार हैं। IMF का कर्ज इस छोटे जजीरा मुल्क के लिए बहुत अहम है ताकि ये दहाइयों के बदतरीन माशी बहरान से बहाली का सुस्त अमल शुरू कर सकें। भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने ऐलान किया कि वजारत जुमे को कोलंबो में IMF के कर्ज के लिए दरकार सहूलत फराहम करेगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आज जुमे को जर्मनी में होने वाली एक डोनर कॉन्फ्रेंस में अपने मगरबी इत्तेहादियों के लिए एक पैगाम दिया कि वो हथियारों की तरसील को तेज करें। अमरीकी फजाइए के रामस्टाइन एयरबेस पर इज्तिमा से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि इत्तेहादियों को टैंकों की तादाद के बारे में सौदेबाजी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बुनियादी तौर पर फराहमी दरकार है जो बुराई को रोक देगी। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने अतिया देने वाले ममालिक से कहा कि हमें मजीद गौर फिक्र की जरूरत है, ये यूक्रेन के लिए फैसला कुन लम्हा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लोग हमें देख रहे हैं, क्रेमलिन हमें देख रहा है और हम तारीख की नजर में भी हैं। लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि हम यूक्रेन के दिफा के लिए अपने मुत्तहिदा अज़्म की तजदीद करेंगे, लेकिन रामस्टाइन मीटिंग में उन्होंने मखसूस नए साजो सामान का जिक्र नहीं किया। इजलास में नेटो के तमाम मरकान समेत 50 काउंटीज के नुमाइंदे भी शामिल थे। अमेरिका और जर्मनी जुमे की मीटिंग से पहले लेपर्ड 2 और एब्राम्स टैंकों की फराहमी के बारे में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे थे, जिनकी यूक्रेन ने दरख्वास्त कर रखी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वाजह किया कि यूक्रेन को जदीद टैंकों की फराहमी की जरूरत है। जुमेरात को देर गए एक वीडियो खिताब में उन्होंने कहा कि उनका मुल्क मजबूत फैसलों और अमरीका से एक ताकतवर फौजी इमदादी पैकेज की तवक्को कर रहा है। यूक्रेन की जानिब से अपने मगरबी इत्तेहादियों से रूस को शिकस्त देने के लिए टैंक भेजने की अपील के चंद घंटे बाद अमरीका ने जुमेरात को 2.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा की फौजी इमदाद का ऐलान किया, लेकिन उनमें टैंकों की फराहमी शामिल नहीं है। रूस के हमले के बाद से नए अमरीकी इमदादी पैकेज से यूक्रेन को मिलने वाली अमरीकी फौजी इमदाद तकरीबन 27 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। यूक्रेन के वजीर खारजा देमेत्रो कोलिबा और वजीर दिफा ओलेक्सी रेजिनकोफ ने जुमेरात को एक मुश्तरका बयान में उन 50 ममालिक का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने यूक्रेन के दिफा को मजबूत बनाने में मदद की, लेकिन उन्होंने कहा कि रूसी फौज को फौजियों, हथियारों और फौजी साजो सामान के हवाले से बढ़तरी हासिल है। रूस ने जुमे को कहा कि यूक्रेन को इजाफी टैंकों की फराहमी का जंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोफ ने मॉस्को में सहाफियों को बताया हक के हमने बारहा कहा है कि इस तरह की सप्लाई बुनियादी तौर पर कुछ नहीं बदलेगी, लेकिन यूक्रेन और यूक्रेन के आवाम के लिए मसाइल में इजाफा करेगी। उन्होंने कहा कि मगरिब को अपनी इस गलतफहमी पर पछतावा होगा कि यूक्रेन मैदान जंग में जीत सकता है। सोमाली फौजी हुकाम ने जुमेरात को बताया कि जुनूबी और वस्ती सोमालिया में दो अलग अलग फौजी कार्रवाइयों में अशबाब के 69 अस्करियत पसंद मारे गए हैं। मुल्क की वजारत दिफा के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल अली अन्नोत ने कहा कि कौमी फौज, इत्तेहादी कबाइल, मलेशिया और बैन अलाक़वामी शराकत दारों की तरफ से वस्ती इलाके शबील में किए गए एक मुश्तरका ऑपरेशन में कम अज कम 49 अस्करियत पसंद हलाक हुए। उन्होंने मजीद कहा कि सरकारी फौजियों ने दहशतगर्द ग्रुप से हथियार भी कब्जे में लिए हैं। अनूत ने कहा कि मुश्तरका फोर्सेज ने बुध को देर गए एक फार्म में अस्करियत पसंदों से मुकाबला किया। अस्करियत पसंदों ने मंगल के रोज करीबी सोमाली फौजी अड्डे पर मोहलिक हमला किया था, जिसमें एक कमांडर समेत कम अज कम 7 सरकारी फौजी मारे गए थे। चीन के सरकारी टेलीविजन CCTV ने जुमेरात को बताया कि तिब्बत के जुनूब मगरबी इलाके में बर्फानी तोता गिरने से कम अज कम 8 अफराद हलाक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की एमरजेंसी मैनेजमेंट की वजारत ने लिंजी शहर में लाशों और लापता अफराद की बाजियाबी के ऑपरेशन की निगरानी के लिए एक टीम भेजी है। हुक्काम ने लापता अफराद की तादाद के बारे में मजीद तफसीलात जारी नहीं की। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर बेहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।